नमस्कार। आज बहुत खुशी का दिन है कि हमारे शासन के द्वारा एवं प्रशासन के द्वारा बोर्ड परीक्षा एग्जाम के बाद जो तनाव उत्पन्न होता है, जिसमें बच्चे कई बार आत्महत्या कर लेते हैं या कठिन स्थिति में फंस जाते हैं, उसको दूर करने के लिए एक अभिनव पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें हमारे माननीय कलेक्टर श्री अवनीश चंद्र जी का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। इसके पहले भी इस वेबिनार में कई लोगों ने अपने उद्बोधन दिए हैं और काफ़ी प्रशंसनीय और अच्छे लगे सुनने में। वो इस प्रोग्राम में मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी साइकेट्रिस्ट आपसे कहना चाहूँगा कि तनाव वास्तव में होता क्या है। तनाव जो है एक प्रतिक्रिया होती है, जो शरीर और मन की प्रतिक्रिया किसी नए सिचुएशन के लिए या नए चैलेंज के लिए होती है, तो उसके उत्पन्न प्रतिक्रिया को अपन तनाव कहते हैं। तनाव दो किस्म के हो सकते हैं। पहला तनाव जब जो कि नेचुरल होता है, जो हमारे जीने के लिए और हमारे को आगे बढ़ने के लिए ये योगदान देता है। जैसे हमको कोई गोल डायरेक्टेड कार्यक्रम करना है, हमें अपना एग्ज़ाम देना है, हमें अपनी तैयारी करना है, हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना है, अपनी बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना है, तो उसके लिए गोल डायरेक्टेड अपने के लिए तनाव तो आता है, लेकिन उसके वक्त को हम दूर करने के लिए लगातार अभ्यास करते हैं और वांछित परिणाम की तरफ एक दिशा हमको मिल जाती है। तो ये जो नेचुरल तनाव है वो अपनी जिंदगी लिए अति आवश्यक चीज़ है। सीधी सी बात यह भी है कि अगर तनाव नहीं होता तो हो सकता कि हम अनपढ़ रह जाते, हम निश्चिंत हो जाए कि हमको तनाव लेना ही नहीं है, हम पढ़ाई नहीं करेंगे। जब हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हम पास कैसे होंगे? कौन पढ़ना चाहेगा ऐसे में जब उसको लगता है कि सब पास हो जाएगा? तो इसलिए जो नेचुरल तनाव है ये आपके आगे बढ़ने के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा दूसरा तनाव होता है जिसमें आपके जो प्रतिक्रिया होती है शरीर में जब उस समय होती है, इसका कारण दो होता है कि अनुपात से बहुत ज़्यादा तनाव हो और लंबे समय तक चलता रहे। जब लंबे समय तक तनाव चलता है और उसको कहीं स्थान नहीं मिलता है, लगातार दबाव बनता जाता है, ऐसी कंडीशन में व्यक्ति टूटता है और उसके शरीर में तीन किस्म के परिवर्तन अपन सामान्यतः देखते हैं। अपन देखते हैं पहला कि इसको शरीर अंतर से जो आता है कि इसको हेडेक की शिकायत करने लग जाता है, उसको कंधे और गर्दन में सिर दर्द की शिकायत करने लग जाता है, उसको लगता है गले में कुछ फंस गया है, उससे ऐसा महसूस होता है कि छाती भारी हो गई है, हाथ पर में दर्द महसूस करता है। इसके अलावा पूरे शरीर में दर्द होना या पेट में गोल गोल घूमना या तितली चलना ऐसा महसूस होता है। बढ़ते हुए केस जिसमें ज़्यादा तनाव महसूस होता है तो लोगों को बॉवल सिम्टम मतलब बार बार बाथरूम जाने की इच्छा भी चालू हो जाती है। ये हो जाता है आपका फिजियोलॉजिकल। दूसरा चीज़ें बॉडीली चेंजेज होता है। फिजियोलॉजिकल के अलावा अपने साइकोलॉजिकल आते हैं तो एक ही चिंता जब उसको आवश्यकता से ज़्यादा बार बार महसूस होती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाता, उसको निगेटिव विचार अपने खुद के प्रति, दूसरों के प्रति, अपने जानने वाले के प्रति लगातार आते रहते हैं, उससे वो कोप अप नहीं कर पाता है। ऐसी कंडीशन में उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन डेवलप होता है, उदासी डेवलप होती है, कई बार उसके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट और एग्रेशन डेवलप होता है, कई बार वो हिंसात्मक रूप धारण भी कर लेता है जब उसको कोई रिजॉल्यूशन इस चीज़ का नहीं मिलता है। तो तीसरी बात आते हैं अपन इसमें कि बिहेवियरल चेंजेस क्या आते हैं। फिजियोलॉजिकल चेंजेस देख लिए अपने शरीर में, हमने देख लिया साइकोसोशल अंतर शरीर में अपन ने देखा, अब आता है बिहेवियर चेंजेस। ऐसी लगातार स्थिति जब लंबे समय तक चलती है तो स्टूडेंट या कोई भी पेशेंट है वो तनावग्रस्त होने के बाद धीरे धीरे उन सोशल गैदरिंग में जाना बंद कर देता है जिसमें पहले वो जाया करता था, जिसमें इसको आनंद आता था वो जाना बंद कर देता है, उससे नए लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है, उसको कहीं आना जाना अच्छा नहीं लगता है, लोग उसको आमंत्रित करते हैं तो चिड़चिड़ा के जवाब देता है या घर से निकलता ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उस चीज़ को सहने की क्षमता में कमी आ जाती है। ये तो सामान्यतः से अपन ढूंढे कि ये क्या हुआ और क्यों हुआ तनाव के कारण। अब उसके अपन काजस में आते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण तनाव उत्पन्न होते हैं। सामान्य कुछ कारण को अपन लेके चले, जैसे घर का टूटना, धन का अभाव होना, आर्थिक समस्या का होना, घर में कलह का मचा होना, घर में कोई नशीले की वस्तुओं के लगातार घर के बड़े सदस्यों को इस्तेमाल करना, घर में पारिवारिक संकट बना होना, ये ऐसी स्थितियां होती हैं जिसको देख के बाल मन इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाता है, कह भी नहीं पाता, सह भी नहीं पाता है, ऐसे कंडीशन में भी उसको धीरे धीरे तनाव बढ़ता जाता है। अब सवाल उठता है कि हम इसी के लिए बचने के लिए करें क्या। हमको उसको बचने के लिए जैसे हमने बताया कि दो किस्म के तनाव हैं, एक तनाव जो है आपकी पौष्टि है जो आपको ठीक करने के लिए काम कर रहा है, दूसरा वो तनाव जिसके कारण अपने को कोप अप करने की आवश्यकता है, जिसके कारण अपने शरीर में सिम्टम्स आने लग गए हैं, जो लोगों को दिखने और सामने आने लग गए हैं, ऐसे कंडीशन के लिए हमें उसका असेसमेंट करने की आवश्यकता होती है। ये देखा जाता है कि जो तनाव आ रहा है उसके लिए उसकी तैयारी या तो बच्चे की पूरी नहीं हुई पढ़ाई में, ऐसे कंडीशन बचने के लिए हमको ये सोच के चलना पड़ेगा कि हम अपनी तैयारी कैसे करें। उस तैयारी करने के लिए सबसे पहला काम आता है तनाव प्रबंधन के हिसाब से टाइम मैनेजमेंट। अगर आप पढ़ने में बहुत साधारण हैं तो साल के शुरू से पढ़ना चालू कीजिए और उसके नियम बनाएं कि 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा मैं प्रतिदिन पढ़ूंगा, इतने इतने सब्जेक्ट को इतने इतने पन्ने को डेली में पढ़ूंगा और उसको मैं उसका रिविजन करते हुए मैं साल के अंत में अच्छे नंबर पाने का प्रयास करूँगा। इसके अलावा आता है कि हम फिजिकली अगर फिट नहीं है तो मन भी फिट नहीं रहेगा, तो फिजिकल फिटनेस के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपने योग अभ्यास करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें या हम नेचर की तरफ भी बढ़ें। आजकल अब सबसे ज़्यादा ये देखने में आ रहा है कि विटामिन डी की कमी 80% लोगों में बहुत आसानी से मेल में भी मिलने लगी, पहले फीमेल में ज़्यादा हुआ करती थी, तो उस वजह से भी उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, उसको बीमारियाँ घर करती हैं, उसका तनाव और भी बढ़ता है, ध्यान उसका भटकता है, फोकस नहीं हो पाता है। फोकस नहीं होने के कारण उसका जो कार्य की उत्पादकता है, पढ़ाई की जो क्षमताएं थी या उसके जो उसका यील्ड आना चाहिए था वो नहीं आ पाता है और वो लगातार पीछे चलता चलता है। अपन आगे और बात करें इसमें कि इसके कोप अप करके अपने करना क्या पड़ेगा। जैसे हमने बताया कि इसको टाइम मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है, एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है, उसे अपने सीनियर से, अपने टीचर से, अपने सहपाठियों से पूछताछ करने की आवश्यकता है कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मैं क्या करूँ। जब तक हम अपनी मन की परेशानी को, अपने मन के सवाल को किसी से पूछेंगे नहीं, हमको सब समझ में आ गया, हम हाँ बोलेंगे तो हम जिंदगी भर पीछे रह जाएंगे। एक बार आप ये मान लो कि हम कमज़ोर थे, हम मूर्ख हैं मान लेते हैं थोड़े के लिए, लेकिन अपने सवाल अपन अपने टीचर से, अपने साथियों से करेंगे तो हमको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा और हम इसके सहजता से आगे बढ़ जाएंगे और हम बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। अक्सर ये देखने आता है, तनाव जनित बातें हो गई, इसको कोप अप करने की बातें भी मैंने की है। कई बार ये देखने में आता है कि हाई एक्सपेक्टेशन रहते हैं समाज में जीने के लिए, लोग आर्थिक उन्नति का सबसे अच्छा साधन मानते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, IAS बन जाए, जज बन जाए, CA बन जाए, वगैरह वगैरह वगैरह, जो सामान्य तौर से इनको दिखाई देता है, सामने आता है समाज के आसपास के मॉडल को देखते हुए। उसकी चाह रखना कोई गलत नहीं है, लेकिन सबसे आसान तरीका ही नज़र आता है। तो जितने भी माता पिता जनरली वो अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को बच्चों की दुनिया में जीते हुए देखना चाहते हैं और अनावश्यक या आवश्यक रूप से कई बार वो उसके ऊपर दबाव डालते हैं, चाहे अनचाहे शरीर में, चाहे वो अपने जवान से ना बोले, उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो दबाव बच्चा महसूस करता है। यह दबाव वो महसूस करता है तब सबसे बड़ी खतरे की घंटी बजती है। हर एग्ज़ाम जो एक एग्ज़ाम 3 घंटे के अपन देते हैं, तो साल भर की चीज़ जो पढ़ी है, चीज़ें हमने, हो सकता है समय पे हमको याद ना आए, हो सकता है हम उतनी स्पीड से ना लिख पाएँ, हो सकता है हम उसको उस क्रम में ना लिख पाएँ जिस क्रम से एग्जामिनर उसको चाहता है कि लिख के दिया जाए। ऐसे कंडीशन में जब प्राप्तांक कम आते हैं या बच्चा फेल हो जाता है तो उसके मन में एक सवाल आता है बार बार कि मैं लोगों को क्या मुँह दिखाऊँगा और मैं बड़ा उससे कहना चाहूँगा कि ये जो मुंह दिखाने वाली बात आती है ये सबसे गंभीर बातों में से एक है। उसको लगता है कि मैं फेल हो गया तो अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने पिता को क्या, माता पिता को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने टीचर से क्या कहूंगा, उन सीनियर्स के क्या बोलूंगा जिनसे मैंने गाइडेंस लेके पढ़ाई लिखाई किया था। उसके तनाव की वजह से उसके दिमाग में समझ में आना बंद हो जाता है। उसकी पराकाष्ठा जब पहुँचती है तब वो घबरा के या अनियंत्रित होके कठोर कदम उठाता है, आत्महत्या की तरफ कोशिश करता है या करने में कामयाब होता है। ये सबसे कठिन स्थिति होती है। तो मेरा इस मंच से सभी पालक से और उनके जितने सहपाठी सुन रहे हैं, जितने टीचर जो अभी सुन रहे हैं, मेरा नम्र निवेदन है कि हमें एक्सपेक्टेशन जो बहुत हाई है अगर अपने किसी माता पिता का, पालकों का या बच्चे का खुद का या बच्चे के साथी लोग उसको बढ़ा के धरे कि उनको फलाना बनना ढिकना बनना कर गए, उस कंडीशन में उसको उतना ना करें। मेरा तो एक ख्याल है कि इसके लिए प्लान बी हमेशा तैयार रखना चाहिए। प्लान बी मतलब ये है कि अगर हम कोई प्रोफेशनल एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसके वैकल्पिक व्यवस्था क्या है हमारे पास, क्या सब डॉक्टर इंजीनियर बनना ही जरूरी है? हम रोजगार के लिए कोई बिजनेस के लिए कोई काम कर सकते हैं, हम नए काम को इन्वेंट कर सकते हैं, स्टार्टअप प्रोग्राम आजकल चल ही रहे हैं हमारे देश में, उसमें हम लोन लेके आगे बढ़ सकते हैं और एक सफल व्यक्ति बनकर समाज को अपना नाम दे सकते हैं। पूर्व विदित है कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी हुए हमारे यहाँ, बहुत से ऐसे वैज्ञानिक हुए हैं जिनका उल्लेख पुराने अभी के उद्बोधन में लोगों ने बताया भी कि अपने जिंदगी में फेल हुए, 10वीं फेल हुए, 6वीं तेंदुलकर, लेकिन ये इतने आगे और जीनियस कहलाते हैं अपने खेल में कि उनकी पढ़ाई 10वीं फेल है या 10वीं पास है कोई मतलब नहीं आ जाता है। बहुत सारे ऐसे हजारों उदाहरण हमारे समाज में मिलेंगे जो जब सक्सेस हो जाते हैं और उनके अंदर जब टटोलने जाते हैं तो ये पता चलता है कि नहीं, पढ़ाई के क्रम में कभी ऊंचा नीचा होना स्वाभाविक सी घटना है। उस समय उसकी मनस्थिति क्या चल रही थी, पारिवारिक स्थिति क्या चल रही थी, उस व्यक्ति की आर्थिक स्थिति क्या चल रही थी, सपोर्ट सिस्टम था कि नहीं था, इन बहुत सारी चीज़ों की वजह से रिजल्ट खराब आ जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि उसका क्या बोलते हैं एक जो एक खराब मार्कशीट उसका जीवन को परिलक्षित करेगा कि इसके आदमी होशियार था कि नहीं था। दूसरी तीसरी बार प्रयास करने पे भी हमारे डॉक्टरी में हमने देखा है, MBBS के लिए जब पुराने हम जान करते थे तो 1, 2, 3, 4, 5 अटेम्प्ट करके भी लोग आते हैं और अभी भी आते रहते हैं। तो इसका मतलब ये कि इतनी जिजीविषा रहती है उनके अंदर किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उसमें वो लगातार बढ़ते चलते हैं। और इसमें फिर आगे चलते हुए मुझे आत्महत्या वाली बात एक और बहुत अच्छा अपने प्रसिद्ध कवि नीरज गोपालदास नीरज जी हुए हैं जिन्होंने कई फिल्मों में गीत भी लिखे हैं, उनकी एक कविता याद आती है मुझे, कुछ पंक्तियाँ याद आ रही है। छिप छिप कर अश्रु बहाने वालों, व्यर्थ मोती बहाने वालों, कुछ सपनों के ढल जाने से ये जीवन नहीं मरा करता है। तो इसमें कवि संदेश दे रहे हैं कि आप छोटी मोटी घटनाएं हर की जिंदगी में ऊपर नीचे चलते रहती हैं और हमें साहस के साथ, नई आशा के साथ, नए साहस और शक्ति को संजो कर हमें आगे बढ़ना है और अपने कार्य को आगे बढ़ाना है। और इस आत्महत्या भी एक काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में। जब लगता है कि पहले पता कैसे चले कि बच्चा ये आत्महत्या कर सकता है, तो उसके लिए हमें बड़ा सावधान होना पड़ेगा। हर जगह साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट हो या मेंटल हॉस्पिटल के लोग उपलब्ध नहीं हो सकते हैं, तो हमको जो मेरा अनुमान है कि मैं तो टीचरों की महानता को मानता हूँ कि वो हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि लगातार 10 साल 12 साल तक बच्चे को अपने देख रेख में देख रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसकी कार्य प्रणाली को लगातार नज़र ध्यान रखे हुए हैं। तो मेरा टीचर से, क्लास के टीचर हुए या अन्य सब्जेक्ट के टीचर हुए, वो लगातार इस बात को महसूस कर सकते हैं कि बच्चे में अब परिवर्तन आ रहा है जो नकारात्मक संदेश दे रहा है। नकारात्मक संदेश कैसे हैं माता पिता भी जानना चाहेंगे जो भी जुड़े हुए हैं, मैं बताना चाहूँगा कि अगर बच्चा एकदम चुपचाप हो गया है, वो आँखें नहीं मिला रहा है, जवाब हाँ ना में देके मामला ख़त्म कर रहा है, उसकी भूख में कमी आ गई है, बातचीत नहीं कर रहा है और हर बात पे झुंझला रहा है या चिड़चिड़ा रहा है। अक्सर आत्महत्या के केस में यह भी देखा गया है कि लोग जो है अपना आत्महत्या करने के पहले इस संदेश को अपने मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए लोगों से या एजुकेशन से जुड़े सिस्टम से या नज़दीकी दोस्त को ज़रूर सूचना देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चा या स्टूडेंट संकेत दे रहा है कि मैं मरना चाहता हूँ, निगेटिव विचार की धारा से घिरा हुआ नज़र आ रहा है, चेहरे से फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन में उसको हमें काउंसलिंग करने की आवश्यकता है। काउंसलिंग तत्काल को साइकेट्रिक काउंसलिंग तो सब मिल नहीं पाएगी। इस कंडीशन से बचने के लिए हमको सलाह देने के लिए हम उसको का ध्यान को डाइवर्ट करना पड़ेगा, उसे हमको समझाइश देना पड़ेगा कि सिर्फ एग्ज़ाम ही कोई ऐसी बात नहीं है जिसके लिए तुम्हारी ज़िंदगी रुक जाए, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ जिंदगी भर बने रहेंगे, हम तुमको आगे बढ़ाने में हमेशा मदद करते रहेंगे, इस साल अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब हो गया तो कोई बात नहीं है, तुम आगे बढ़ोगे, अच्छे से मेहनत करोगे और अच्छे प्राप्तांक प्राप्त करके पास होगे। इसके अलावा अपने को देखना कि बिल्कुल स्थिति खराब हो रही है, वो बार बार मरने का प्रयास कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो नशे की तरफ उसका झुकाव आ गया है या उसको संभालना मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में इसकी 24 घंटे निगरानी की आवश्यकता भी है और आवश्यकता पड़ने पर उसे जो साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं या मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए जो लोग हैं उनको उनके पास ले जाना चाहिए। अगर लगता है कि मेंटल हॉस्पिटल या मेंटल हेल्थ से जुड़े हुए लोगों के पास अपन नहीं ले जा पा रहे हैं, ऐसे कंडीशन में जो गांव की PHC होती है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हुआ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हुआ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हुआ, या आसपास जो डॉक्टर्स अपने ब्लॉक में मौजूद हैं उनसे भी अगर मिलेंगे तो भी वो डॉक्टर्स भी साइकेट्री के बारे में थोड़ा बहुत सूझबूझ रखते हैं, वो सोच समझ के उसमें दवाई डाल सकते हैं, समझाइश दे सकते हैं, या जरूरत पड़ने पर उसको आगे आने की सलाह दे सकते हैं कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, साइकोलॉजिस्ट को दिखाइए, या इसकी काउंसलिंग की आवश्यकता है। तनाव प्रबंधन के बारे में और ही कहना चाहूँगा मैं कि अपन जब तनाव जनित रहते हैं तो उसको बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कि हम इसके लिए जैसे बताया मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योग अभ्यास करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब हम डीप ब्रीदिंग लेते हैं, जब हम सांस पेट से ले लेते हैं, फुला के जब लेते हैं, तो धीरे धीरे हमारे जो हार्मोन्स हैं जो हमें उत्तेजना प्रकट करते रहते हैं, तनाव देते रहते हैं, कार्टिसोल जो बढ़ जाता है उसमें कमी देखी जाती है। ध्यान लगाने से निस्संदेह निश्चित तौर पर स्वानुभूत है हमारा कि पाया जाता है कि टेंशन में काफ़ी कमी पाई जाती है, लेकिन ये एक दो दिन करने से नहीं होगा, इसके लिए लगातार अभ्यास करने की आवश्यकता होगी आपको। इसके अलावा हम बात करें भोजन की बात करें कि क्या लेना चाहिए, तो जब एग्जाम का समय आता है या उसके पहले भी हमें ज़्यादा भारी खाने से बचना चाहिए, हमें सादा शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए, हमें हल्का फुल्का खाना चाहिए। अक्सर ये देखने में आता है कि नींद की समस्या बड़ी आम होती है लोगों में, इस समय लोगों का स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि स्लीप हाइजीन का हमें इस्तेमाल करना है। स्लीप हाइजीन क्या होती है? स्लीप हाइजीन में कुछ नहीं है कि हमको अपना टाइम टेबल निश्चित करना पड़ेगा कि हम इतने समय जागेंगे, इतने समय सोएंगे, इतने समय पढ़ेंगे, इतने समय कम से कम 7 घंटे का अपने को टाइम रिलैक्स होने के लिए, माइंड को रिलैक्स होने के लिए, बॉडी को रिलैक्स होने के लिए आवश्यक है कि 6 से 7 घंटा आप मिनिमम एग्जाम के समय भी सोएं, ताकि आपका दिमाग जब ठंडा रहेगा तो आप बाकी चीज़ें पढ़ाई लिखाई की अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे। तो 7 घंटे स्लीप होने के लिए जब लगता है आपका कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गया है, तो हमको कोशिश करना कि हम उस टाइम के जुड़े रहेंगे। हम खाना खाने के बाद तुरंत बेड में हमको नहीं जाना है, बेड में अगर बैठ के हमको पढ़ाई नहीं करना है, अपने को खाना खाने के बाद 10-5 मिनट के लिए टहलने की आवश्यकता है, उसे टहलना है, जरूरत पड़ने पर उनको लाइट म्यूजिक सुनना है, लोगों से इधर उधर थोड़ी देर के लिए गपशप भी करना है, और ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे आपका मोबाइल हो, लैपटॉप हो या TV हो, इनसे सोने के पहले कम से कम 1-2 घंटा पहले उनसे दूरी बना के रखेंगे, तो जो अपने हार्मोन हैं जो दिमाग को ठंडा रखते हैं वो सक्रिय रहेंगे, और आपको उत्तेजना जब नहीं मिलेगी तो आपका तनाव की स्थिति में कमी आएगी। धन्यवाद।